राग कल्याण, कल्याण महला चौथा, अष्टपदियां एको सतगुर प्रसाद। रामा हम दासन दास करी जय, रामा हम दासन दास करी जय।
सत्संग के ये वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। ये चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। आप प्रेम और भक्ति के लिए बहुत ही मशहूर हुए हैं। आपका जो भी शब्द लिया जाए वही प्रेम और भक्ति से भरा हुआ है। आप में नम्रता का कोई अंत ना था। सच्ची नम्रता का भी हमें साधुओं, संतों, महात्माओं की संगत से ही पता चलता है। आप परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते हैं। आप मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें अपने दासों का दास बना, हमें अपने प्रेमियों का दास बना। मालिक के दास कौन होते हैं? जो मालिक के भगत और मालिक के प्यारे होते हैं। यानी हमें साधुओं, संतों, महात्माओं की संगत और सोबत बख्श, क्योंकि जब तक हम दासों के दास नहीं बनते, तेरे दास भी नहीं बन सकते, वापस जाकर तेरे साथ कभी मिल नहीं सकते। हमारा मन संगत और सोबत का बहुत जल्दी असर लेता है। अगर हम बुरी संगत करते हैं तो हमारे मन में बुरे ख्याल पैदा हो जाते हैं। अगर हम अच्छी संगत करते हैं तो उसका भी असर हमारे ऊपर होता है। नेक पुरुषों को देखकर हमारे अंदर भी नेकी का प्यार, नेकी के लिए चाव पैदा हो जाता है। इसलिए महात्मा साध संगत पर जोर देते हैं। अगर हमारे मन को ठोकर लगती रहे, हमें कोई समझाता रहे, तब कहीं जाकर हमारा ध्यान थोड़ा बहुत परमात्मा की भक्ति की तरफ जाता है। मन को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दो, मन उसी तरह उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। गुरु रामदास जी हमारी ओर से मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं, गोविंद जियो सत्संगत मेल हरते आइए। हे परमात्मा, साधुओं, संतों, महात्माओं की संगत और सोबत दे, जिससे तेरी भक्ति की तरफ हमारा ख्याल जाए, हमें तेरी याद आए। कबीर साहब कहते हैं, एक घड़ी, आधी हूँ से आद, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। एक घड़ी बल्कि आधी से भी आधी घड़ी जो हम मालिक के भक्तों और गुरमुखों की संगत और सोबत करते हैं, उससे हमारे मन से हजारों प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं। पता नहीं महात्मा की वाणी की कौन सी तुक हमारे कानों में पड़ जाए जो हमारे जीवन को ही पलट कर रख दे। इसलिए महात्मा सदा साधुओं, संतों और भक्तों की संगत और सोबत पर जोर देते हैं। इसलिए गुरु साहब हमारी ओर से परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि हमें अपने भक्तों की संगत दे, हमें अपने प्यारों की सोबत दे, ताकि हम भी तेरे भगत और प्यारे बन सकें, हम भी वापस जाकर सदा के लिए तेरे अंदर समा सकें।
जब लग सांस होए मन अंतर, साधु तूर पीवी जय।
आप फिर हमारी ओर से मालिक के आगे अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, जब तक सांस आ रही है, जितनी देर तूने जीवन बख्शा है, जितनी देर तक शरीर में रहने का मान दिया है, दिन रात यही चाहते हैं कि हमें साधुओं, संतों, महात्माओं के चरणों की धूल मिलती रहे, उनकी संगत मिलती रहे, ताकि उनकी भक्ति और प्यार के द्वारा हम भी अपने अंदर तेरी भक्ति और तेरा प्यार पैदा कर सकें, हम भी वापस जाकर तेरे साथ सदा के लिए मिलाप कर सकें। तभी इंसान के जामे में आने का हमारा मकसद पूरा हो सकता है और हम अपनी मंजिले मकसूद की खोज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे साधुओं, संतों, महात्माओं की संगत और सोबत हमें कब प्राप्त होती है? जब उस आदिकर्ता की, उस परमात्मा की हम पर दया, मेहर, बख्शिश हो जाती है। मालिक की भक्ति की ओर हमारा ध्यान ही परमात्मा की दया, मेहर और बख्शिश द्वारा जाता है। जब वह परमात्मा चाहता है, तभी हमारा ख्याल उसके प्रेम और भक्ति में लगता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर साचे पावे सा पूजा होवे। भाई जब परमात्मा की इच्छा होगी, जब परमात्मा को मंजूर होगा, तब ही तू परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आँखों वाला है। अंधे की क्या ताकत है कि वह आँखों वाले को पकड़ सके। जब तक आँखों वाला अंधे को आवाज़ देकर अपने निकट ना बुलाए या उसके हाथ में अपनी उंगली ना पकड़ा दे, मालिक ही दया मेहर और बख्शिश करे, तब हमारा ध्यान इस मोह और माया के जाल से निकलकर परमात्मा की भक्ति में लगता है, परमात्मा के प्यार में लगता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जीवन मरना सब तो देताई, जिस बख्शे तिस दे वडियाई। हे अकाल पुरुष, हमारा हर एक का मरण जन्म तेरे अपने हाथ में है। जिनके ऊपर तेरी दया मेहर और बख्शिश हो जाती है, उनको ही तेरे साथ मिलने की बढ़ाई मिलती है। इसलिए गुरु नानक साहब हमारी ओर से परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, हम सांस सांस के साथ तेरी भक्ति करना चाहते हैं। हम हर कदम पर तेरे भक्तों, तेरे प्यारों की संगत और सोबत मांगते हैं, जिससे हमें तेरी भक्ति प्राप्त हो, हमारा ध्यान तेरी भक्ति में लगा रहे।
शंकर नारद शेख नाग मुने तूर साधु की लोची जय।
गुरु साहब फरमाते हैं कि हे परमात्मा, मैं ही नहीं, शिवजी जैसे देवता, नारद मुनि जैसे उच्च कोटि के भगत, ऋषि मुनि जितने भी हैं, वह सदा तेरे भक्तों की संगत मांगते हैं, वह तेरे साधुओं संतों महात्माओं की सोबत मांगते हैं। भाव ये है कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं, वह भी यही चाहते हैं कि हमें भी इंसान का जामा मिले, हमें भी किसी साधु की संगत और सोबत प्राप्त हो, हम भी परमात्मा की भक्ति करके वापस जाकर परमात्मा के साथ मिल सकें। कबीर साहब की वाणी है, इस देही को सिमरें देव। ये जो इंसान का जामा है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। देवी देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं, क्योंकि अगर किसी देह को ये सौभाग्य है कि वह मालिक की भक्ति करके मालिक के साथ मिलाप कर सकता है, तो वह केवल इंसान का जामा है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि देवी देवता भी संतों महात्माओं की धूल को तरसते हैं, संगत और सोबत को तरसते हैं। इसलिए हे परमात्मा, हम पर दया कर, मेहर कर, बख्शिश कर, ताकि हमें तेरे दासों, तेरे भक्तों और तेरे प्यारों की सोबत प्राप्त हो जाए।
पवन पवन पवित्र होए सब, जह साधु चरण तरी जय।
गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस स्थान पर, जिस घर में, जिस जगह पर ऐसे साधु संत महात्मा जाते हैं, वह घर, वह स्थान और वह जगह सब पवित्र हो जाते हैं। आप देख लें, जिन स्थानों पर ऋषियों मुनियों ने भजन किया है, गुरु साहिबान ने मालिक की भक्ति और प्रचार किया है, मालिक के साथ प्यार किया है, वह स्थान आज हमारे लिए तीर्थ स्थान बने हुए हैं। हम किस तरह वहाँ की मिट्टी माथे पर लगाते हैं, उन स्थानों पर जाकर अपने माथे घिसते हैं, इसलिए कि इन स्थानों पर गुरु साहिबान ने मालिक की भक्ति की है, हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा किया है। वह स्थान हमारे लिए आदर के, प्यार के काबिल बन गए हैं। जहाँ कहीं बैठकर उन्होंने दातुन की थी, आज दातुन साहब बन गया है। जहाँ कहीं चौकड़ी मारकर बैठे थे, चौकड़ा साहब बना हुआ है। वह स्थान हमारे लिए कितने पवित्र हो गए हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन स्थानों पर ऐसे महात्मा, भगत और प्यारे पहुंच जाते हैं, वह स्थान भी पवित्र हो जाते हैं। लोग वहां भक्ति करने के लिए जाते हैं, मालिक की खोज, मालिक के प्यार के लिए जाते हैं, उस वातावरण से लाभ उठाकर मालिक की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। गुरु साहब प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अपने भक्तों की संगत दे, अपने प्यारों की सोबत दे।
ताजे लाजे अहंकार सब तजिए, मिले साधु संग रही जय।
अब जब हमारा ध्यान गुरुमुखों की संगत और सोबत की ओर जाता है तो कौन सी चीज़ हमारी राह में आकर खड़ी हो जाती है? गुरु साहब फरमाते हैं, ये लोक लाज है, दुनिया के ताने हैं, लोग क्या कहेंगे, बरादरी वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कौम और मज़हब वाले क्या कहेंगे। हम उस लोक लाज के अधीन होकर गुरुमुखों की संगत और सोबत ही नहीं करते, गुरुमुखों की सोबत से लाभ उठाने की कोशिश ही नहीं करते। गुरु साहब फरमाते हैं कि अगर अंदर मालिक से मिलने का शौक, प्रेम, प्यार, विरह और तड़प है लेकिन लोक लाज के अधीन है तो फिर हम मालिक को छोटा समझे बैठे हैं और दुनिया को बड़ा समझे बैठे हैं। अगर अंदर मालिक से मिलने का सच्चा शौक और सच्चा प्यार है तो इस हालत में मालिक सबसे बड़ा होता है, दुनिया छोटी होती है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि हमारे रास्ते में ज़बरदस्त रुकावट दुनिया की लोक लाज है, इसको छोड़कर ही परमात्मा की भक्ति करनी है, दुनिया के तानों का ख्याल नहीं करना है। हजूर महाराज जी हिस्ट्री में से कई उदाहरण देकर समझाया करते थे कि राय साहब लाला सालिगराम जी श्री हजूर स्वामी जी महाराज के प्रमुख प्रेमी सत्संगी थे। आपका स्वामी जी महाराज के साथ इतना प्यार था कि उनके स्नान करने के लिए यमुना नदी से गागर में पानी भरकर लाया करते थे। आपका पद दुनिया के अनुसार कोई कम नहीं था, यूपी के पोस्ट मास्टर जनरल थे। जब आपकी बिरादरी वालों को पता चला जहां स्वामी जी महाराज का मकान था, छोटे छोटे बाजारों और गलियों में से गुजरकर उनका मकान आता था, और जिस बाजार गली में से गुजरकर आप जाया करते थे वहां आपके रिश्तेदारों और बिरादरी वालों के मकान थे। उन्होंने ताने मारने शुरू कर दिए, देखो कितना बड़ा अफसर होकर इसकी अकल को क्या हो गया है। जिस वक़्त आपको पता चला तो आपने अपने पैरों में झांझरें पहन ली, घुंघरू बांध लिए ताकि जिसको नहीं पता चला उसको भी पता चल जाए। जिसके मन में सच्चा इश्क, सच्चा प्यार होता है वह दुनिया के तानों लोक लाज की परवाह नहीं करते। इसलिए चौथी पातशाही गुरु रामदास जी हमें समझाते हैं कि अगर हमारे मन में मालिक से मिलने का शौक और प्यार है तो महात्माओं की जात पात नहीं परखनी चाहिए, कौम, मजहब और मुल्क नहीं परखने चाहिए। हमें तो सच्चे महात्मा की खोज करनी है जो परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो चुके होते हैं। ना परमात्मा की कोई जाति पाती है, ना महात्मा की, ना ही हमारी आत्मा की कोई जाति पाती है। ये सब जाति पाती ऊंच नीच के झगड़े हमारे अपने बनाए हुए हैं। संत महात्मा तो हमें इनसे निकाल कर हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि सब लोक लाज छोड़कर सीधे होकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए।
तरम राय की कान चुकावे, बिखे डुबदा काड कड़ी जय।
अब गुरु साहब इसका कारण समझाते हैं कि अगर हम दुनिया की लोक लाज छोड़कर गुरुमुखों की संगत और सोबत में जाकर परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें इसका क्या फायदा होगा। जो भी धर्मराज का हिसाब किताब है वह सारा खत्म हो जाएगा। इस अथाह जहर के सागर से हम सदा के लिए बाहर निकल आएंगे। धर्मराज का क्या हिसाब किताब है? कर्मों का हिसाब किताब है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, हम उस सतनाम समुन्द्र के कतरे हैं, उस मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। सब कर्मों का हिसाब किताब भुगतने के लिए हर एक को बार बार मरण जन्म में आना पड़ता है। ना अच्छे कर्म करके कभी देह के बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं, ना बुरे कर्म करके मरण जन्म के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बन जाते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, लोहे की बेड़ियां उतर जाती हैं, सोने की जंजीरें चढ़ जाती हैं, सी क्लास छोड़कर ए क्लास हासिल कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैकुंठों और स्वर्गों में पहुंच जाते हैं। वह भी भोग योनियां हैं, फॉर सर्टन टाइम और पीरियड के लिए होती हैं, उनको भोगने के बाद फिर वापस यहाँ 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो हमारे लिए नरक और 84 तैयार ही रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा। क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, दुनिया के सभी जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इन कर्मों के कारण ही हमें दुनिया में दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। कभी कुत्ते बनते हैं, कभी बिल्ले बनते हैं। अगर इंसान का जामा भी मिल जाता है, फिर कौन सा सुख हासिल करते हैं या कभी शांति प्राप्त कर सकते हैं? कभी बीमारी ने तंग किया हुआ है, कभी बेरोजगारी के हाथों दुखी हो जाते हैं, कभी कर्जा लेने का दुख है, कभी कर्जा देने का दुख है। इसी तरह कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी में आकर रोटी कपड़े के लिए तड़पते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, उस नगरी और शरीर में आकर हम सुख किस तरह हासिल कर सकते हैं, शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर इंसान के जामे में आकर सुख शांति नहीं मिलती, तो फिर कौन से जामे के अंदर सुख और शांति मिलेगी? इस इंसान के जामे से या 84 लाख जिया जून के दुखों से हमारा छुटकारा उस समय ही हो सकेगा जिस समय हमारे सारे कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन कर्मों के कारण हम देह के बंधनों के कैदी बने बैठे हैं, अगर हम गुरुमुखों की संगत और सोबत में जाकर नाम की कमाई करते हैं, उन सारे कर्मों का हिसाब किताब ही खत्म हो जाता है। हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है, मालिक से मिलने के काबिल हो जाती है। गुरु रामदास जी कहते हैं, सतगुरु पुरख अमृतसर वडभागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दिड़ाए। हमारा ख्याल है कि अमृत के सरोवर में स्नान करने से ही हम अमर और निर्मल हो सकते हैं। आप फरमाते हैं कि जो गुरुमुखों की संगत है, साधुओं संतों महात्माओं की संगत है, वह ही अमृत का सरोवर है। इसलिए उस सरोवर में स्नान करके हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब खत्म करना है। आप फरमाते हैं, वडभागी नावे आए, इस अमृत के सरोवर में खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव ही नहाने के लिए आते हैं। हम हमेशा बाहरी सरोवरों की तरफ दौड़ते फिरते हैं। जिस सरोवर का महात्मा जिक्र करते हैं, वह सरोवर हर एक के शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर अमृतसर साचा, हे भाई, वह सच्चा अमृतसर तेरी देह के अंदर है। हम बाहरी सरोवरों और तीर्थों की भी इज्जत करते हैं, क्योंकि इसी जगह पर बैठकर गुरु साहिबान ने, संतों महात्माओं ने शब्द और नाम का प्रचार किया है और हमारे ख्याल को हर तरह के भ्रमों और संकल्पों से निकालने की कोशिश की है। इसलिए वह स्थान भी हमें प्यारे लगते हैं, लेकिन जिस सरोवर में स्नान करके हमने मुक्ति हासिल करनी है, वह बाहर के सरोवर कभी नहीं हो सकते। बाहर का पानी कितना भी साफ और पवित्र क्यों ना हो, वह हमारे शरीर की मैल तो उतार सकता है, लेकिन वह जो पापों का मैल है, गुरु साहब फरमाते हैं, तोपे नामे के रंग, वह तो नाम की कमाई करके ही धोया जा सकता है। हम बाहर मुखी होकर समझते हैं कि हर अमावस को जाकर सरोवर में स्नान कर लेने से हमारे पिछले सारे पाप दूर हो जाएंगे और आगे के लिए छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन महात्मा हमें बाहर मुखी नहीं करते, कर्मकांड में नहीं फंसाते। वह समझाते हैं कि जिस सरोवर में जाकर तुम्हें स्नान करना है, वह सरोवर मालिक ने सबको बख्शा है। अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में सरोवर में नहाकर ही मुक्ति मिल सकती है, तो ये बहुत लावाजिब बात है। उस परमात्मा की दुनिया तो करोड़ों मीलों में फैली हुई है। जो लोग कभी हिंदुस्तान आ नहीं सकते, कभी यहाँ पहुँच ही नहीं सकते, क्या वह जीव कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, कभी परमात्मा को मिल नहीं सकते? परमात्मा ने अपने पास पहुंचने का एक जैसा कुदरती कानून बनाया हुआ है। इसलिए अमृत के जिस सरोवर का महात्मा जिक्र करते हैं, वह अमृत का सरोवर हमारे हर एक के शरीर के अंदर है। लेकिन गुरु साहब फरमाते हैं कि वह भाग्यशाली जीव हैं, खुशकिस्मत जीव हैं, जो अपने ख्याल को, अपने मन को बाहरी संकल्पों में से निकालकर, भ्रमों में से निकालकर देह या शरीर के अंदर जाकर नाम का स्नान करते हैं, गुरुमुखों की संगत और सोबत का फायदा उठाते हैं। आप फरमाते हैं, इस सरोवर के अंदर स्नान करने से एक जन्म के कर्मों का मैल ही नहीं, जन्म जन्म के कर्मों का मैल उतर जाता है। जब हे नाम हृदय तरयो, भया पाप को नास, मानो चिंगी आग की बड़ी पुरानी घास। जिस तरह सूखी घास का ढेर कितना भी बड़ा क्यों ना लगा हो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है। इसी तरह हम साकत पुरुषों या मनमुखों के कितने भी बुरे खोटे पाप और कर्म क्यों ना हों, नाम की एक कणी सबका हिसाब किताब खत्म कर देती है। गुरु नानक साहब समझाते हैं कि अगर हम दुनिया की लोकलाज को छोड़कर गुरुमुखों की संगत में जाकर मालिक की भक्ति करते हैं तो हमारा सब हिसाब किताब खत्म हो जाता है। हम जो विष के सागर में गोते खा रहे हैं इससे हम बाहर आ जाते हैं। ये कर्मों का सिलसिला ही खत्म हो जाता है और हम मन और माया के दायरे से पार जाकर परमात्मा से मिल जाते हैं। ये जितने भी हमारे कर्म हैं तीन प्रकार के हैं, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म और संचित कर्म। एक वह कर्म हैं जो पीछे बोए थे और जिनका फल अब भुगत रहे हैं, ये प्रारब्ध कर्म हैं। दूसरे वे हैं जिनके बीज अब हम बोने में लगे हुए हैं, ये हमारे क्रियमान कर्म हैं। यही अगले जन्म में जाकर हमारे प्रारब्ध कर्म बन जाएंगे जिनका फल हमें भुगतना पड़ेगा। जो कुछ अब बोएंगे वही आगे जाकर हमारा प्रारब्ध बन जाता है, उसका फल आगे जाकर हमें भुगतना पड़ता है। फिर हर जन्म में पिछले जन्मों का हिसाब किताब खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। हर जन्म में से कुछ कर्म बचते हैं जिनका अच्छा खासा लंबा चौड़ा स्टोर या भंडार बन जाता है, ये संचित कर्म हैं। जब तक ये तीनों प्रकार के कर्म खत्म नहीं होते हमारी आत्मा निर्मल नहीं हो सकती, मालिक से मिलने के काबिल नहीं बन सकती। महात्मा समझाते हैं कि ये जितने भी तुम्हारे प्रारब्ध कर्म हैं मालिक का भाना मालिक का हुक्म समझकर भुगत लो और शब्द या नाम की कमाई करो, जिससे तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और शक्ति आ जाएगी कि इन कर्मों का खुशी खुशी हिसाब किताब खत्म कर सकोगे। वह परमात्मा भी कई बार दया मेहर बख्शिश करके सूली की सूल कर देता है। फिर जो आगे के लिए कर्म करेंगे क्योंकि नाम की कमाई में लगे हुए हैं मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं, इसलिए कोई बुरा खोटा कर्म ही नहीं होता जिस कारण हमें देह के बंधनों में वापस आना पड़े। जितने भी ये हमारे संचित कर्म हैं इनका संबंध मन के साथ है। मन शब्द को पकड़कर ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, आत्मा इसके पंजे से आज़ाद हो जाती है, इन सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि जब तक सब कर्मों का हिसाब किताब नहीं खत्म होता आत्मा कभी पवित्र नहीं हो सकती, परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। इसलिए गुरुमुखों की संगत में जाना है, साधुओं संतों महात्माओं की सोबत में जाकर मालिक की भक्ति करनी है, नाम की कमाई करनी है।
परम सुके बहु उब सुख कहिए, मिले साधु संग हरि जय।
आप बताते हैं कि अगर खेती सूख जाती है, अगर कोई पेड़ सूख जाता है, उसको हरा करने के लिए हम क्या करते हैं? पानी देते हैं। जैसे जैसे उसके तने को नमी मिलती जाती है वह फिर हरा होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार हमारा हृदय भ्रमों में फंसकर बिल्कुल सूख चुका है, बाहर के संकल्पों बाहर के भ्रमों में डूबा हुआ है। जिस समय हम गुरुमुखों की संगत करते हैं फिर हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक जाग पड़ता है, उससे मिलने की तड़प विरह और प्यार पैदा हो जाता है। अभी हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कर्मकांड में उलझे हुए हैं, पहले तो मालिक की भक्ति ही नहीं करते। अगर कभी थोड़ा बहुत ध्यान आ भी जाता है तो हम रीति रिवाजों और कर्मकांड में उलझ जाते हैं, बाहर मुखी हो जाते हैं। लेकिन गुरुमुखों की संगत और सोबत में जाकर इन भ्रमों और संकल्पों में से हमारा ख्याल निकल जाता है, मालिक का सच्चा इश्क सच्चा प्यार पैदा हो जाता है, मालिक से मिलने के रास्ते और तरीके का पता चल जाता है। उस रास्ते पर चलकर हम परमात्मा की भक्ति करनी शुरू कर देते हैं। जो हमारा हृदय सूखा पड़ा था वह हरा हो जाता है। जो हृदय परमात्मा को भूलकर दुनिया के संकल्पों दुनिया की शक्लों पदार्थों के लिए तड़पता और भटकता फिरता था वह दुनिया में से निकलकर मालिक की वह और प्रेम से भर जाता है। इसलिए गुरु साहब समझाते हैं कि मैं तुमको यही आदेश देता हूं कि गुरुमुखों की सोबत करो।
ताते बिलम पलटिल ना की जय, जाए साधु चरण लगी जय।
आप शुरू से हमें समझाते चले आ रहे हैं कि हमें गुरुमुखों की संगत क्यों करनी है, साधुओं संतों महात्माओं की सोबत क्यों करनी है, उनकी संगत और सोबत में जाकर हमें क्या फायदा होता है। सब कुछ समझाकर अब ये फरमाते हैं कि अपने कीमती वक्त को फजूल की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, सारी उम्र स्कीमें ही नहीं बनाते रहना चाहिए कि लड़के लड़कियां बड़े हो जाएं, इनके प्रति हमारे कर्तव्य पूरे कर लें, थोड़ा बहुत दान दौलत इकट्ठा कर लें, फिर कहीं गुरुमुखों की संगत में जाकर मालिक की भक्ति करेंगे। हमारी कितनी ही नेक नीयत की योजनाएं क्यों ना हों, हमें मालिक के प्रोग्राम का कुछ पता नहीं कब मालिक का बुलावा आ जाना है, भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़ना है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि एक पल, एक मिनट, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस ओर से ख्याल को निकालकर गुरुमुखों की संगत और सोबत में रखना है, उनकी संगत और सोबत में जाकर मालिक की भक्ति करनी है, मालिक की खोज करनी है।
राम नाम कीर्तन रतन वाथ हरे साधु पास रखी जय।
अब मन में ख्याल आता है कि गुरु साहब गुरुमुखों साधुओं संतों महात्माओं की संगत या सोबत पर इतना क्यों जोर देते हैं, उनकी संगत और सोबत में जाकर हमें क्या फायदा प्राप्त हो सकता है। आप समझाते हैं वह जो नाम रूपी दौलत है, वह जो रत्न है, परमात्मा ने उसको हासिल करने का भेद, युक्ति या तरीका गुरुमुखों साधु संतों महात्माओं के हवाले किया हुआ है। वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी हुई है, लेकिन अंदर जाकर उसकी खोज किस तरह करनी है, उस दौलत को अपना बनाकर बादशाह किस तरह बनना है, इसका भेद प्राप्त करने के लिए गुरुमुखों साधुओं संतों महात्माओं के पास जाना पड़ता है। अगर किसी के घर में करोड़ों रुपए का खजाना दबा हुआ हो, लेकिन उसे अपने घर की दौलत का पता ही ना हो कि इतनी ऊंची दौलत उसके घर में दबी हुई है, वह बाहर सड़कों पर मारा मारा फिरता है, दर दर ठोकरें खाता फिरता है, उसको उस दौलत का क्या फ़ायदा हो सकता है। जब कोई घर का भेदी मिल जाता है, जिसके कहने के अनुसार वह घर के अंदर खोज करनी शुरू कर देता है, उस दौलत को पाकर वह बादशाह बन जाता है, बाहर की ठोकरों से बच जाता है। इसी तरह हमें अपने आप की सूझ और समझ नहीं है कि परमात्मा ने इतनी ऊंची और सच्ची नाम की दौलत हमारे अंदर रखी हुई है। हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कर्मकांड में उलझे हुए हैं, बेटे बेटियों के प्यार में फंसे हुए हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में दिन रात उलझे बैठे हैं। जिस समय गुरुमुखों की संगत और सोबत करते हैं तो वह हमें बताते हैं कि क्यों अपने कीमती वक्त को खराब कर रहे हो। परमात्मा ने सब कुछ हमारे अंदर रखा हुआ है, जो कुछ हमारे अंदर रखा हुआ है उसे प्राप्त करने का तरीका हमें गुरुमुख लोग बता देते हैं, साधन समझा देते हैं। जिस समय उनके बताए हुए तरीके और साधन के अनुसार हम अपने अंदर जाकर खोज करनी शुरू कर देते हैं, तो हम भी उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त कर लेते हैं और उस दौलत को पाकर हमारा भी मरण जन्म के दुखों से सदा के लिए छुटकारा हो जाता है। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि सभी को पता है कि दूध के अंदर घी होता है, लेकिन उस घी से हम कोई फायदा नहीं उठा सकते जब तक हमें वह युक्ति का पता नहीं चलता कि किस तरह दूध के अंदर से घी निकाला जा सकता है। जब कोई युक्ति बताता है कि इस तरह दूध को जमाकर दही बनाओ, फिर इस तरीके से दही को मथ कर मक्खन निकालो, फिर मक्खन को इस ढंग से गर्म करके छाछ को अलग करो, तो वह घी उस दूध में से निकल ही आता है। घी कहीं बाहर से नहीं आया, लेकिन उस युक्ति को जाने बिना दूध के अंदर जो घी था उससे हम कभी लाभ नहीं उठा सकते थे। इसी तरह विद्या की ताकत हमारे सबके अंदर मौजूद होती है, लेकिन वह ताकत हमारे सबके अंदर सोई हुई होती है। जिस समय हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, उस्तादों की सोबत और आज्ञा का पालन करते हैं, वह सोई हुई ताकत जाग पड़ती है। हम BA, MA, आलिम फाजल गुणी ज्ञानी बन जाते हैं। जिनके पास वकालत, इंजीनियरिंग की डिग्रियां हैं, उनसे जाकर पूछो कि उनके अंदर कौन सी चीज़ उस्तादों ने घोल कर डाली है। केवल उस्तादों की संगत और सोबत करने से ही 15 या 20 साल उनके साथ रहने के कारण ही वह सब विद्या या ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो बच्चे उस्तादों से डरते हुए स्कूलों कॉलेजों में नहीं जाते, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी होती है, लेकिन वह सोई हुई आती है और सोई हुई ही चली जाती है। इसी प्रकार गुरु साहब हमें उपदेश करते हैं कि गुरुमुखों ने घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालना है, वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी हुई है, लेकिन उसे हासिल किस तरह करना है इसके लिए गुरुमुखों की संगत और सोबत करनी है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी और जगह कहते हैं, कासट मह ज्यो है बसंतर, मत संजम काड कढ़ी जय, राम नाम है जोत सबाई, तत गुरमत काड लई जय। कि जिस तरह लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, ना अग्नि नजर आती है, ना ही उस अग्नि से हम फायदा उठा सकते हैं। जिस समय हम लकड़ी पर लकड़ी रगड़ते हैं, हम उस लकड़ी से अग्नि भी पैदा कर लेते हैं और अग्नि से फायदा भी उठा लेते हैं। इसी प्रकार वह राम नाम की ज्योत हमारे सब के अंदर आँखों के पीछे जल रही है, वह चोरों के अंदर भी जल रही है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी जल रही है, लेकिन ना हम उसको देख सकते हैं ना उससे फायदा उठा सकते हैं। जिस समय हम गुरुमुखों के कहने के अनुसार चलते हैं, उनके उपदेश पर चलते हैं, उस ज्योति के दर्शन भी कर लेते हैं, उससे फायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं। वह जो गुरुमुखों का उपदेश और युक्ति है वह क्या है? गुरु साहब आगे फरमाते हैं, 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चुई जय। उनकी ये युक्ति है कि भाई, जब तक तुम आँखों के नीचे नीचे बैठे हो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आँखों के नीचे नीचे सब इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों शराबों कबाबों की लस्तें हैं, ये लस्तें फीकी हैं। अगर तुम उस रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहते हो, राम नाम की ज्योति के दर्शन करना चाहते हो, तो अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करो। जब तक उनकी बताई हुई युक्ति और तरीके के अनुसार उस नुक्ते और केंद्र पर ख्याल इकट्ठा नहीं करते जहां दाता दाद देता है, बख्शिश करता है, अमृत रूपी नाम बरसता है, तब तक हम उस अमृत को किस तरह पी सकते हैं? हम तो बाहर की चीज़ों को अमृत समझे बैठे हैं। कोई बताशे घोलकर अमृत समझ लेता है, कोई किसी अन्य चीज़ को, कोई पत्थरों पर पानी डालकर उसको चरणामृत समझ कर अमृत माने बैठा है, लेकिन जो सच्चा अमृत है वह तो 24 घंटे आंखों के पीछे हमारे सबके अंदर बरस रहा है। उस अमृत को पीकर ही हम अमर हो सकते हैं। जिस मन ने उस अमृत को पीना है, वह मन तो कभी बेटे बेटियों की तरफ दौड़ता है, कभी काम क्रोध की तरफ दौड़ता है, कभी कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों की तरफ दौड़ता है। जब तक हम उस मन को 9 द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे लाकर एकाग्र नहीं करते, तब तक हम उस अमृत को पी कैसे सकते हैं? दिन रात कितनी भी जबरदस्त बारिश होती रहे, अगर हम बर्तन को ही उल्टा करके रख देते हैं तो उस बर्तन में पानी की एक भी बूंद नहीं जा सकती। उसी बर्तन को सीधा कर दो, पहली नहीं तो दूसरी तीसरी बारिश में भर जाएगा। हम सबको उस अमृत की, उस आबे हयात की, उस लिविंग वाटर या चेतन जल की अपने अंदर से खोज करनी है। वह चोरों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ किसी कौम मज़हब या मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वह अमृत कहाँ है, उसको किस तरह पीना है? गुरु साहब फरमाते हैं कि इसके लिए साधु संतों महात्माओं की संगत और सोबत की ज़रूरत है। किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देख लो, हर एक महात्मा उसी शब्द की महिमा करता है, उसी नाम की महिमा करता है। दुनिया के अंदर कभी कोई महात्मा कौम या मज़हब बनाने के लिए नहीं आते, ना कभी महात्मा हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं, ना ही वह मजहबों मुल्कों की हुकूमत के लिए आते हैं। वह तो हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक पैदा करने, उससे मिलने का तरीका बताने के लिए आते हैं कि किस प्रकार उस राम नाम की ज्योति के अपने अंदर ही दर्शन करने हैं, किस प्रकार उस अमृत को पीकर अमर होना है। हम दुनिया के जीव उन महात्माओं के जाने के बाद बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्मकांड में फंस जाते हैं। जिन सरोवरों पर बैठकर वे स्नान किया करते थे या जो सरोवर उन्होंने सात संगत के स्नान के लिए बनाए थे, हम समझते हैं कि महीने के बाद जाकर हम भी वहां स्नान कराएं तो शायद हमारे सारे पाप उतर जाएंगे। जो ग्रंथ पोथियाँ उन्होंने हमें बाहरी भ्रमों से निकालने के लिए हमारे अंदर नाम की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा करने के लिए लिखी थी, हम समझते हैं कि दिन रात उन्हीं को पढ़ने से हमारा ख्याल शब्द या नाम के साथ जुड़ जाएगा। हम सदा बाहर के भ्रमों में उलझने की कोशिश करते हैं। जिन स्थानों पर वे महात्मा ज्योति जोत समाए थे, उन स्थानों पर समाधियां बनाकर माथे रगड़ते हैं कि शायद ऐसा करने से ही या उनकी खड़ाओं को पूजने से, उनकी मूर्तियों की भक्ति करने से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, या उनके कपड़ों को हाथ लगाने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, या उस मिट्टी को ही माथे पर मल कर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। हम बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में उलझने की कोशिश करते हैं। महात्माओं ने अपनी जिंदगी के 50-50, 60-60 साल इन्हीं भ्रमों में से निकालने के लिए लगाए, लेकिन हम उनके जाने के बाद फिर इन भ्रमों में फंसने की कोशिश करते हैं। जिस चीज़ की ओर से हमारे ध्यान और तवज्जो को ले जाते हैं कि इधर से ध्यान को मोड़कर शरीर के अंदर प्रवेश करो और 9 द्वारों में से ख्याल को निकाल कर आँखों के पीछे इकट्ठा करो, फिर तुम अमृत को पी सकोगे, फिर तुम ज्योति के दर्शन कर सकोगे, हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश ही नहीं करते। वह शब्द या नाम कहीं बाहर नहीं है, वह हम सबके अंदर है। उस अमृत को महात्माओं ने कई लफ्ज़ों से याद किया है। ये जितने भी हमारे लफ्ज हैं जो हमने अपने अपने प्यार में आकर परमात्मा के नाम रखे हुए हैं, कोई अल्लाह, कोई राधा स्वामी, कोई परमात्मा, कोई हरिओम, कोई परमेश्वर, ये सभी नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। पहले तो हमारे कितने देश हैं, एक एक देश की कितनी कितनी ज़बानें हैं, और हर एक ज़बान में कितने कितने लफ्ज़ों के साथ दिन रात परमात्मा को याद करते हैं। हमारे दिए हुए सारे नाम वर्णात्मक शब्द हैं, ये हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। हम हर एक शब्द की हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, म्याद मुकर्रर कर सकते हैं। कोई शब्द 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 1400 साल पुराना है और कोई इससे भी ज़्यादा पुराना है। इससे पहले की हिस्ट्री का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन जिस शब्द की महात्मा महिमा करते हैं वह आँखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, मुँह से बोला नहीं जा सकता। हजूर महाराज जी उसको अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज कहकर समझाया करते थे। उसी नाम के आधार पर हमारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, उस नाम के आधार पर सारी दुनिया की रचना हुई है। आगे चलकर गुरु साहब समझाएंगे कि जब तक हम उस नाम के अंदर नहीं रमते, अपने आप को उसके अंदर लीन नहीं करते, तब तक हम मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, मरण जन्म के दुखों से छुटकारा किस तरह हासिल कर सकते हैं। जिस समय आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, फिर पता चलता है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो कि मालिक की दरगाह से उठती है, हम सब के अंदर धुनकारें दे रही है। अपने ख्याल को उस आवाज़ के साथ जोड़ना है जिसको कोई शब्द, कोई नाम, कोई आकाशवाणी, कोई कलमा बांगेसमानी कह देता है, कोई वर्ड या लोगास कहकर बयान कर देता है। हम इन लफ्ज़ों के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये लफ्ज़ जिस चीज़ की महिमा करते हैं, उस चीज़ को कभी अपने अंदर खोजने की कोशिश नहीं करते। गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरुमुखों की संगत में जाकर ही हम इन भ्रमों में से निकल सकते हैं। इसलिए तुक तुक में आप बार बार जोर देते हैं कि गुरुमुखों की सोबत करनी है, साधुओं, संतों, महात्माओं की संगत करनी है।
जो बचन गुरे सत सत कर माने, तिसे आगे काड़े तरी जय।
अब गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरुमुखों की संगत और सोबत से फायदा कौन उठाते हैं, वह ही जो उनके वचनों को सच मानते हैं, उनके वचनों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके समझाने के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। जो लोग शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वह ही उनकी संगत का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए जब तक हम उन पर विश्वास और भरोसा नहीं करते, उनके कहने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, तब तक हम उनकी संगत और सोबत से पूरा पूरा फायदा नहीं उठा सकते।
संतो सुनो सुनो जन पाई, गुरे काढ़ी बाहां कुकी जय, जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, ता सतगुर शरण पवी जय।
अब चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज संगत को समझाते हैं कि हमारे सतगुरु तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने बाँह उठाकर दुनिया में होका दिया है कि अगर किसी को आत्मिक सुख की चाह है, अगर कोई मन और आत्मा की शांति चाहता है, उसको जब भी मिलेगी गुरुमुखों की संगत और सोबत से मिलेगी, उनके कहने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई करके ही मिलेगी। हम सुख और शांति ढूंढने के लिए बेटे बेटियों की ओर ख्याल ले जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की मान भड़ाई में सुख ढूंढते हैं, शराबों कबाबों की लस्तों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जितना जितना मन इधर उधर सुख ढूंढने के लिए जाता है, उतना ही दिन रात और दुखी होते चले जाते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों में से हम सुख ढूंढ रहे हैं वह सब चीज़ें आर्जी हैं, टेम्परेरी हैं। उनका सुख और आराम भी केवल आर्जी ही हो सकता है। जब तक हमें वह चीज़ ना मिले जो कभी नाश या फना ना हो, हम उसे अपना ना बना लें, तब तक हम सुख और शांति किस तरह हासिल कर सकते हैं? वह कौन सी चीज़ है? वह केवल एक अकाल पुरुष परमात्मा परमेश्वर वाहेगुरु है, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। असल हमेशा असल में जाकर ही सुख और शांति हासिल कर सकता है। जो आत्मा है, इसका असल वह परमात्मा है। आप आत्मा को जो चाहे दे दे, जब तक ये अपने असल की ओर नहीं जाएगी, असल में लीन नहीं होगी, कभी सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकती। जिन्हें मालिक ने सब कुछ दिया है, सेहत भी दी है, दौलत भी दी है, बाल बच्चे भी दिए हैं, दुनिया की इज्जत भी दी है, कभी अकेले में बैठकर देखें, मन सदा उदास रहता है, किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस करता ही रहता है। हर एक चीज़ के होने के बावजूद ये लोनलीनेस की फीलिंग या अकेलेपन का ख्याल हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। ये आत्मा की अपने असल की ओर कुदरती कशिश है। जब तक ये अपने असल की ओर नहीं जाती, ये अकेलेपन की भावना कभी हमारे अंदर से नहीं जा सकती। ये अकेलेपन का ख्याल कभी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। इस अकेलेपन की भावना को दूर करने के लिए ही हम मालिक की भक्ति करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। अब हम अपने असल को तो ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उसको भूलकर दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। जितना इस दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उतना ही दिन रात दुखी होते चले जाते हैं। इसलिए गुरु साहब उपदेश करते हैं कि हमारे सतगुरु ने बाँह उठाकर दुनिया में होका दिया है कि अगर आत्मिक सुख की जरूरत है तो वह तुमको गुरुमुखों की शरण में जाकर मालिक की भक्ति, मालिक से प्यार करके ही मिल सकती है। बाहर से आज तक ना किसी को सुख और शांति मिली है, ना किसी को मिल सकती है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जिन्नी कर जाता अपना से सुखिए पाई। जो सज्जन अपने घर पहुंच जाते हैं, अपने परमात्मा में, अपने असल में जाकर मिल जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। हमेशा के लिए उनका मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। जो कुछ हमें मिलना है, वह परमात्मा के प्यार से मिलना है। गुरुमुखों की शरण हासिल करने का मतलब ही ये है कि उनके समझाने के अनुसार अपने जीवन को ढालकर मालिक की भक्ति करनी है, नाम की कमाई करनी है, अपने आप में से अहम को निकाल देना है, तब जाकर सुख हासिल कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं।
जेवड पाग होए अति नीका, ता गुरमत नाम दृढ़ी जय।
अब गुरु साहब समझाते हैं कि ये जो आत्मिक सुख के रास्ते पर चलना है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत ही बड़े भाग्य हों, श्रेष्ठ कर्म हों, परमात्मा की हम पर बहुत अधिक दया मेहर बख्शिश हो, तब जाकर हम गुरमत के द्वारा नाम की कमाई में लगकर आत्मिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो बहुत ही अच्छे कर्म हो, तब जाकर 84 लाख योनियां भुगतने के बाद कहीं इंसान का जामा मिलता है। उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म हो, तब कहीं गुरमुखों की संगत और सोबत प्राप्त होती है। और भी उच्च कर्म हो, तब हम गुरमत पर चलने की कोशिश करते हैं। अति उच्च भाग्य से गुरमुखों पर भरोसा या विश्वास आता है और अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ने के काबिल बनते हैं। इसलिए गुरु साहब के कहने का मतलब है कि जो लोग मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत और सोबत में जाकर नाम या शब्द की कमाई करने में लगे हुए हैं, वह कोई मामूली जीव नहीं है, वह बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कर्मों वाले हैं।
सब माया मोह बिखम जग तरिए, सहजे हर रस पीजे।
अब गुरु साहब दुनिया की ओर नजर डालकर दुनिया की हालत बयान करते हैं कि हम सभी दुनिया के जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की भक्ति की और किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इन विषय विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम तो मन में सोचे बैठे हैं कि ए जग मिठा अगला किन डिठा, बाबर बै ऐश कोश के आलम दोबारा निस्त। यानी परमात्मा ने इंसान का जामा शायद शराबों कबाबों की लस्तों के लिए ही बख्शा है। इन भोगों में इतना उलझ गए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। हर रोज देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़े जा रहे हैं, बल्कि खुद साथ जाकर उनको शमशान भूमि तक छोड़ कर आते हैं। लेकिन कभी नहीं सोचते कि वह दुनिया में से कौन सी चीज़ साथ लेकर जा रहा है और हमें दुनिया में से कौन सी चीज़ साथ लेकर जाना है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े विजेता तानाशाह, बड़े बड़े सेठ शाहूकार कारखानेदार, जो सारी दुनिया की जायदादों को अपनी बनाए बैठे थे, देखते देखते पल भर में सब कुछ छोड़कर एक तरफ हो जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की कब्रों को आज हम किस तरह हकारत की नज़र से देखते हैं। इसी तरह कोई ऐसा समय भी आना है जब इसी तरह लोगों ने हमारी कब्रों को देखना है। इसलिए गुरु साहब हमें गफलत की नींद से जगाते हैं कि क्यों तुम माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सो रहे हो। आप फरमाते हैं कि सहजे हर रस पीजे, कि तुम गुरमुखों की संगत में जाकर, साधु संतों महात्माओं की सोबत में जाकर अपने अंदर ही उस हरी रस को पीने की कोशिश करो। वह अमृत 24 घंटे हर एक के अंदर आंखों के पीछे बरस रहा है। जो उनकी संगत और सोबत में जाकर उस अमृत को पीना शुरू कर देते हैं, वह हरी रस को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, वह सहज अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप उस परमात्मा के अंदर समा जाते हैं।
माया माया के जो अधिकाई, विच माया पचे पची जय, अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा, अहंकार पार लदली जाए।
कहते हैं कि जो जीव मालिक की भक्ति नहीं करते, मालिक की खोज नहीं करते, माया के प्यार में ही फंसे रहते हैं, उसी को अपना दीन अमान गुरु स्वामी गोसाई समझे बैठे हैं, वे यहाँ पर ही दिन रात पैदा होते और मरते रहते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिस्टा के कीड़े बिस्टा कमावे, फिर बिस्टा माहे पचावणिया। गंदगी के कीड़े गंदगी में ही पैदा होते हैं, गंदगी ही खाते हैं, गंदगी के साथ ही प्यार करते हैं, गंदगी में ही मर जाते हैं और उसी गंदगी के अंदर फिर पैदा हो जाते हैं। मतलब ये है कि अगर हम उस परमात्मा की भक्ति नहीं करते, हम सदा इसी 84 के चक्कर में ही उलझे रहते हैं। दुनिया में दो किस्म के इंसान होते हैं, एक गुरमुख लोग हैं, दूसरे मनमुख लोग हैं। दोनों ही उस परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, और ये भी उस परमात्मा के हाथ में है कि जिन्हें वह चाहता है उन्हें गुरमुख बना देता है। बढ़ाई और महिमा किन की है? केवल गुरमुखों की है। आप गुरमुख किन्हें कहते हैं? जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, उनकी सेवा में आ जाते हैं, ऐसे गुरमुखों की आप ऊपर महिमा कराए हैं, जो सतगुरु के कहे के अनुसार शब्द या नाम की कमाई में लगे हुए हैं। अब आप मनमुखों की हालत बयान करते हैं, जिन्ना सतगुर पुरख न पेट्यो से पागहीन वसकाल। जो सतगुरु की संगत और सोबत में नहीं आते, उनके कहे के अनुसार मालिक की भक्ति नहीं करते, शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, अपने ख्याल को शराबों कबाबों में से नहीं निकालते, वह बहुत ही खोटे भागे वाले हैं। वह क्यों खोटे भागे वाले हैं? क्योंकि उन्होंने मौत के बाद काल के वश में होना है, उन्हें यमदूतों के साथ धर्मराज के सामने पेश होना पड़ना है। जहाँ वह मुनासिब समझता है उन्हें जन्म दे देता है। एक देह के बंधनों से तो उनका छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह रूपी कलबूत पहले ही उनके लिए तैयार खड़ा होता है, उसके अंदर बाद में आते हैं, मौत पहले ही आंखों के सामने आकर नाचना शुरू कर देती है, 10 नंबरियों की तरह उन्हें हथकड़ी लगी ही रहती है। इसलिए आप फरमाते हैं कि वह बहुत खोटे भागे वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इंसान का जामा भी हासिल किया और 84 लाख योनियों के दुख के बाद उनको मौका भी मिला, लेकिन वह अपने कीमती वक़्त को शराबों कबाबों विषय विकारों और इंद्रियों को भोगों में ही बर्बाद करके इस दुनिया से चले गए। आप फरमाते हैं कि उनकी क्या हालत होगी? वह फिर जौन पवाइये विच विष्टा कर विकराल। वह बार बार पैदा होते हैं और बार बार मरते हैं। यहाँ तक दुर्दशा होती है कि उनको विष्टा के कीड़े बनना पड़ता है और गंदी नालियों में जाकर सड़ना पड़ता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुर ना सेवे मूर्ख अंध गवारा, फिर ओए किथों पायन मोख द्वारा। जो गुरमुखों की सेवा नहीं करते, उनके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलते, वह मुक्ति किस प्रकार हासिल कर सकते हैं? वह मूर्ख हैं, अंधे हैं, एक तो आँखों से हीन हैं, दूसरे अंधेरे में फंसे हुए हैं, कुछ नज़र नहीं आता, रास्ते का पता नहीं चलता, सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ है, इस तरह अंधेरे में ठोकरे ही खा रहे हैं।
नानक राम 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 ते गत की जय।
अब गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा ने उस शब्द या नाम के द्वारा ही सारी दुनिया की रचना की है, और वह शब्द या नाम हर एक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा है, वह हर एक के अंदर रमा हुआ है। जब तक हम उसको अपने अंदर जज़्ब नहीं करते, उसमें लिवलीन नहीं होते, अपने आप को उसके अंदर नहीं समा देते, तब तक हमें ऊंची गति नहीं मिल सकती, मरण जन्म के दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए गुरु साहब समझाते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते अपने अंदर ही उस शब्द की खोज करो, उस नाम की खोज करो, तभी परमात्मा से मिलने की गति को प्राप्त कर सकोगे।
सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए, राम नाम रले मिली जय।
सब कुछ बयान करके आप उपदेश करते हैं कि हम उस नाम में किस तरह रम सकते हैं, अपने आप को उसमें किस तरह जज़्ब कर सकते हैं, किस तरह नाम के अंदर लीन हो सकते हैं। सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए। जब सतगुरु मिल जाते हैं, गुरमुखों की संगत मिल जाती है, साधुओं संतों महात्माओं की सोबत मिल जाती है, जिस वक़्त उनके कहने के अनुसार हम शब्द या नाम की कमाई करते हैं, तब जाकर राम के साथ जुड़ सकते हैं, उस नाम के अंदर अपने आप को जज़्ब या लीन कर सकते हैं। फिर फरमाते हैं कि राम नाम में रले मिलीजे। जब तक शब्द या नाम के अंदर अपने आप को जज़्ब या लीन नहीं करते, मालिक तक नहीं पहुँच सकते, मरण जन्म के दुखों से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु साहब ने अच्छी तरह खुलकर समझाया है कि क्यों मालिक के दासों के दास बनना है, क्यों मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत या सोबत करनी है, संगत और सोबत का क्या फ़ायदा होता है, शब्द या नाम की कमाई क्या चीज़ है, किस तरह अपने आप को शब्द या नाम के साथ जोड़ना है। हमें भी चाहिए कि आपके अनुभव आपके उपदेश से लाभ उठाएं और अंदर शब्द से ख्याल को जोड़ें, नाम के साथ ख्याल को जोड़ें।
नानक राम 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 ते गात की जय, सतगुर मिले ता नाम दृढ़ाए, राम नाम रले मिली जय।